जय श्री राधे श्याम। तो आज के 27 दिसंबर 2015 को आप सबका श्री टोटा गोपीनाथ दिव्य धाम में स्वागत है। श्री जगन्नाथपुरी में भी जो यात्री आते हैं उसमें से बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में दो प्रकार के, जगन्नाथपुरी में दो प्रकार के धाम हैं, मतलब दो प्रकार के स्थान हैं। एक स्थान वर्ग जो है वो जगन्नाथ से संबंधित है, और दूसरे स्थान जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला से संबंधित है। तो लोगों को जगन्नाथ जी के संबंधित स्थानों का ज़्यादा परिचय होता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं की स्थलियों का कम परिचय होता है। तो इसलिए यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी थोड़े कम लोग पहुँचते हैं। तो हम सब लोग भाग्यवान लोग हैं कि इस अति सुंदर स्थान पर हम लोग पहुँचे हैं। अति सुंदर स्थान इसलिए नहीं कहते कि वो दिखने में सुंदर है, हो सकता है अति सुंदर स्थान दिखने में बहुत ख़राब हो, लेकिन अति सुंदर वो दिव्य रूप से है, लीलाओं के माध्यम से। इनकी लीलाएं जो हैं वो इतनी श्रेष्ठ हैं, इतनी उच्च दर्जे की है, जो आत्मा के लिए बहुत पोषक और बहुत ही आनंददायी है। उस सृष्टि से टोटा गोपीनाथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान का संबंध जो है, जब ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, जन्म हुआ ब्रह्मा जी का विष्णु के नाभि से, तब से ये स्थान का संबंध है, सबसे प्राचीन। तो इन स्थान की महिमा के वर्णन को आरंभ करने के पहले आप सबको प्रश्न होगा कि ये दर्शन क्या क्या है, तो मैं दर्शन का परिचय कराता हूँ। पहले सबसे पहले आपके बीच में राधा गोपीनाथ जी के विग्रह हैं। राधा गोपीनाथ जी बीच में हैं और गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का जितना अधिकार है, ये पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा एक स्थान नहीं जिसमें कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। सब जगह पर खड़े हैं, त्रिभंग अवस्था में मुरली बजा रहे हैं। एक ही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे हैं, लेकिन बैठ के बजा रहे हैं। तो उनके दो बाजू में दो देवियाँ हैं, एक राधा रानी हैं, और राधा रानी भी बड़ी अद्भुत अवस्था में है, वो वीणा बजा रही है। उनका एक हाथ ऐसे ऊपर है, एक हाथ ऐसे नीचे है। तो वीणा लगाते हैं कभी कभी, लेकिन अभी नहीं थे सुबह दर्शन में, लेकिन राधा रानी वीणा बजा रही है। और लेफ्ट साइड में ललिता देवी खड़ी है और वो मुरली बजा रही है। तो इसका भाव ऐसा है कि वो ललिता देवी और राधा रानी जो है भगवान के विरह में है, भाव में, और वो विरह भाव में ललिता देवी मुरली बजा रही है उनकी याद में। और उनका भी एक राग है विशेष, हाँ, गुजरी तोड़ी, उस राग में वो मुरली बजा रही है, और राधा रानी उसी राग में वीणा बजा रही है। और दोनों रंग सांवले रंग के हैं दोनों। ऐसे कहते हैं कृष्ण के विरह भाव में, कृष्ण की याद में वो कृष्णमय हो गई है, इसलिए कृष्ण भी सांवले हैं और वो भी सांवले हैं। वैसे उनका रंग जो है वो सांवला नहीं है, लेकिन दोनों सांवले रंग में हैं, ये यहाँ का भाव है। लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पर बलराम जी की मूर्ति है और वो ब्यूगल बजा रहे हैं। वो उनके हाथ में ऐसा एक वाद्य है, वो मुरली नहीं है, वो जो गाय चराते समय वो होता है ना ब्यूगल, बफेलो हॉर्न, वो है वो। और उनके साइड में उनकी दो पत्नियाँ हैं, वरुणी देवी और रेवती देवी। रेवती देवी रेवत राजा की कन्या थी और वरुणी वरुण देव की कन्या थी। और वरुणी जो है वो देवी के रूप के साथ साथ पेड़ के पत्तों के माध्यम से जो द्रव्य निकलता है, जो वरुणी कहते हैं, जो बलराम जी पीते हैं, वो रूप में भी वो आती है। तो वरुणी द्रव्य जो है वो एक, उसको तो नशा का द्रव्य नहीं कह सकते, लेकिन दुनिया में हम समझते हैं ना, जो उस पीने के बाद में बहुत ऐसा मन आनंद से विभोर हो जाता है। यहाँ का नशा करने से हमारा इंद्रिय शिथिल हो जाता है, हम लोग ऐसे पागल जैसे हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन ये द्रव्य जो है सोमरस, वरुणी, इसको पीने के बाद में हम लोग ऐसा नशा वाले नहीं होते हैं, हमारी इंद्रियां और शक्तिशाली हो जाती है, हमारी बुद्धि और तेज़ हो जाती है। लेकिन दुख की बात है कि केवल ये दशा, ये द्रव्य पीने के बाद भी भौतिक इच्छाओं को भोग करने की इच्छा बढ़ जाती है। ये सब स्वर्ग लोक में होता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वरुण देव अपनी कन्या को वारुणी द्रव्य के रूप में भेजते हैं। तो वो वारुणी देवी और रेवती देवी, और रेवती देवी का कहानी ऐसा है कि जब बलराम जी का विवाह का समय आया तो उनके लिए जब कन्या ढूंढी गई तो वो रेवत राजा की कन्या थी और सत्ययुग की कन्या थी, वो तो बहुत ऊंची थी वो, और बलराम जी द्वापर युग के थे। तो बलराम जी ने जब उसको पसंद किया तो अपना हल जो है वो ऊपर लेके गए और उसको अटकाया और उसको अपने हाइट का बना दिया। बलराम जी क्या नहीं कर सकते हैं, हाँ, इंस्टेंट करेक्टिव सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। द्वापर युग का हाइट बना दिया और फिर विवाह हो गया उनका। उनका बलदेव जी में उधर वृंदावन में दक्षिण कोने में बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ पर रेवती जी खड़ी है उनके साथ में। राइट में जो मंदिर है वो गौर गदाधर मंदिर है, उसमें दो विग्रह हैं, गौर गदाधर, राधा मदन मोहन, राधा कृष्ण का राधा मदन मोहन विग्रह है और उनके साथ में गौर गदाधर विग्रह हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर गदाधर पंडित जी ने गोपीनाथ जी की सेवा की थी। गदाधर पंडित जी स्वयं राधा रानी के अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं कृष्ण हैं लेकिन राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, उनका हृदय राधा रानी के भाव से भरा हुआ है लेकिन वो है कृष्ण, इसलिए गौर वर्ण के हैं। और राधा रानी फिर भी स्वयं उनके इस अवतार में भी अपना भी अवतार लेती हैं सहायता करने के लिए, तो वो गदाधर पंडित है। तो गदाधर पंडित ने अपने पूरे जगन्नाथपुरी के काल में श्री गोपीनाथ जी का सेवा किया है, इसलिए गौर यानी गौरांग महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों का विग्रह यहाँ पर है, और कृष्ण का विग्रह है, जगन्नाथ जी का विग्रह भी है, राधा मदन मोहन जी। ऐसा ही पूरा दर्शन है, जाने के पहले एक बार दोबारा देख लेना ठीक से, और सबको अपनी अपनी प्रार्थना अर्पण करना। तो इसका महात्म्य ऐसा है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का, उनका पहले सृष्टि का निर्माण हुआ, उसको कहते हैं सर्ग, सर्ग यानी प्राथमिक निर्माण, प्राथमिक सृजन, जो कारण उदकशाही विष्णु अपना दिव्य दृष्टिपात करते हैं तीन गुणों के ऊपर, सत्व रज और तम, और ये तीन गुणों के ऊपर दृष्टिपात होते ही वो कार्यान्वित हो जाते हैं, दे बिकम एक्टिवेटेड और सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। उसमें दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक अचर सृष्टि यानी कि पर्वत, जमीन, देश, प्रदेश, नदियाँ, उसको स्थावर कहते हैं, और दूसरी होती है चर सृष्टि यानी कि हम लोग सब लोग चलने वाले प्राणी, पक्षी, कीटक, जो भी है, मछली, चर सृष्टि। तो चर सृष्टि में सबसे पहले निर्माण होता है ब्रह्मदेव का, और उसके बाद में ब्रह्मदेव के द्वारा विसर्ग सृष्टि का निर्माण होता है, यानी उसको कहते हैं विसर्ग प्रक्रिया, कि आगे का कार्य जो है वो ब्रह्मा जी संभालते हैं, क्रिएटिव पोटेंसी उसको भगवान देते हैं, निर्माण करने की शक्ति। आपको समझ में आ रहा है ना, प्राथमिक निर्माण भगवान करते हैं, सेकेंडरी जो दुय्यम दर्जे का निर्माण है वो ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है भगवान के नाभि से, तो ब्रह्मा जी बहुत अंधकार में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं सब, पूरा निर्माण जो है 14 लोक का वो सब ढूंढ के आते हैं, क्या करना है मुझे, हाँ, तो समझ में नहीं आते उनको। तब भगवान उनको उनके हृदय में ज्ञान देते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ज्ञान देते हैं। वो दशम स्कंद में 39वें अध्याय में 4 श्लोक हैं, उसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, उसके माध्यम से 4 ही श्लोक के माध्यम से पूरा ज्ञान उनको साक्षात्कार उनके हृदय में कर देते हैं। तो अचानक अज्ञान के अंधकार के जगह प्रकाश निर्माण होता है और ब्रह्मा जी को पूरी अनुभूति होती है कि क्या करना है। साथ साथ ऐसे वर्णन आया है कि वो ज्ञान देने के पश्चात भगवान उनको गौलोक धाम का दर्शन करते हैं, कराते हैं, और गौलोक धाम का दर्शन करते हुए ब्रह्मा जी को भगवान कमल अवस्था में बैठे हुए दर्शन देते हैं। ही सिटिंग इन अ लोटस फ्लावर विथ फोल्डेड लेग्स एंड प्लेइंग फ्लूट। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर वो बैठ गए हैं, वो जिनका मूल दर्शन जो ब्रह्मा जी को हुआ था गौलोक धाम में कमल में पद्मासन में बैठे हुए और मुरली बजा रहे हैं, तो उनको देखकर ब्रह्मा जी का हृदय प्रेम से भर आया और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। क्या स्तुति की? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल प्रवृक्ष दस्तावित सुदुर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। और ये मूल स्तुति भगवान की जो है ब्रह्मा जी ने उस समय बनाई थी जब भगवान ने उनको सबसे पहले दर्शन दिया था। अपनी सेवा आरंभ करने के पहले भगवान की स्तुति की उन्होंने, तो वही गोपीनाथ जी आपके सामने प्रकट है। इसलिए मैंने कहा था कि सृष्टि के निर्माण का समय है, सत्ययुग का समय नहीं है, ये अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्म कल्प के शुरुआत के समय का वर्णन है ये। तो ये इनके व्युत्पत्ति का स्थान है, रहस्य है, वही गोपीनाथ जी। इसलिए मैंने कहा कि आप बड़े भाग्यवान हो कि जो सबसे पहले इस मटेरियल वर्ल्ड में ब्रह्मांड में सबसे पहले दर्शन जो हुआ वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। इतना महत्वपूर्ण स्थान है ये। जितने जगन्नाथ जी का नीलाचल धाम, नीलाचल, नीलाद्री, नीला पर्वत, नीलकंदर महत्वपूर्ण है, उतना ही ये स्थान भी महत्वपूर्ण है। फिर बहुत सारी कथाएं इस जगह पर हुई है। ये जगह जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का बहुत उत्कट स्थान है, बहुत ही उत्कट स्थान है। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बंगाल के वैष्णव जगन्नाथपुरी में आए तो सबके रहने की व्यवस्था की गई, तो गदाधर पंडित यहाँ रहते थे इस जगह पर। इस जगह का और एक महात्म्य ऐसा है कि कल मैंने आपको संक्षेप में कथा बताई शाम को कि जब लक्ष्मी जी ब्रह्मादेव को वर्णन कर रही हैं तब वहाँ यमराज भी खड़े हैं और वो सुन रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इस जगह पर भगवान लीला करेंगे। तो इसी जगह पर मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या किया था, भगवान के उस रूप पर उन्होंने ध्यान मग्न किया जो उन्होंने बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर बालकृष्ण का जो दर्शन किया था उस पर उन्होंने ध्यान किया। और वो ध्यान करते वो इतने मग्न हो गए, शिवजी खड़े हो गए उनके ध्यान से, उनके एब्सॉर्प्शन से आकर्षित होकर वहाँ खड़े हो गए, फिर भी उन्होंने आँखें नहीं खोली। तो यो यही स्थान है पूरा, इसको यमेश्वर टोटा कहते हैं। टोटा का अर्थ है बगीचा, उपवन। तो इसी स्थान पर गदाधर पंडित रहते थे और एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो लीला है यहाँ का वो पूरा विरह लीला है, पूरा व्याकुल लीला है। वो भगवान के याद में, भगवान के विरह में यहाँ पर लीला करते हैं, भगवान के विरह का उत्कट अनुभव यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर एक बार जब आए वो तो बहुत व्याकुल हो गए थे वो, और कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे गोपीनाथ करके ढूंढ रहे थे। तो वो यहाँ से आगे चले गए, वहाँ पर चातक पर्वत है, वहाँ पर उन्होंने खोदना शुरू किया, ऐसे ऐसे भाव में आकर अपनी उंगली से जमीन खोदना शुरू किया। तो उनको जमीन खोदने पर, शुरू करने पर उनको कुछ हाथ में हार्ड लगा, हार्ड वस्तु, एक कठिन वस्तु लगा, तो वो भाव में नीचे आ गए। देखा उन्होंने, गदाधर पंडित को बुलाया और देखो यहाँ पर मुझे मुकुट का अनुभव हो रहा है, भगवान का मुकुट लग रहा है ये। तो फिर गदाधर पंडित उनके आनंद के लिए और खुदाई करते हैं, बड़े कोमल खुदाई करते हैं, और उस कोमल खुदाई में से श्री गोपीनाथ जी का विग्रह जो है ये प्रकट हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ये गोपीनाथ जी का विग्रह आपको भेज देना चाहता हूँ, आप चाहते हो? तो गदाधर पंडित दिल में समझते हैं कि भगवान की इच्छा है कि मैं इन विग्रह को स्वीकार करूं और उनकी सेवा करूं। तो फिर गदाधर पंडित अपनी सेवा में गोपीनाथ जी को ले लेते हैं और ये गोपीनाथ जी यहाँ पर सेवा आरंभ होती है। ये जगह इतनी पावरफुल है कि श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे मैंने आपको कल बताया कि सवेरे उठकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, उनका दातून महाप्रसाद बकुल का डंडी लेकर आते थे, ठाकुर हरिदास को देते थे और वहाँ पर 2-3 घंटे भागवत की चर्चा करते थे भगवान के विषय में, फिर भोजन करते थे काशी मिश्रा के घर पे, और फिर दोपहर को भोजन करने के बाद में यहाँ पर आते थे और 2-3 घंटा एकांत में गदाधर पंडित के साथ में निवास करते थे। क्योंकि वैसे भी वो राधा रानी है, ये कृष्ण है, तो मूलभूत आकर्षण तो है ही, किसी भी रूप में क्यों ना हो। दोनों यहाँ पर पुरुष शरीर में है, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में पुरुष शरीर में है और कृष्ण तो स्वयं आदि पुरुष हैं, तो उनका स्थायी आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, तो वो भी कारण है यहाँ पर आते थे। और गदाधर पंडित यहाँ पर श्रीमद् भागवत का पठन करते थे। गदाधर पंडित का महात्म्य ऐसा है, गदाधर पंडित स्वयं श्रीमद् भागवत के बड़े श्रेष्ठ आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके पास में कई लोग सीखने को आए श्रीमद् भागवतम। चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं उनसे सुनने के लिए आते थे यहाँ पर, जगन्नाथपुरी के निवास में यहाँ पर रोज उनके उनसे सुनने के लिए आते थे। और उनके सुनने में एक विशेषता है, हाँ, बहुत लोगों की आंखें ऐसे 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 बंद हो रही है, हाँ, तो मेरी आपको विनती है कि अगर आपको नींद आ रही है, यहाँ का वर्णन बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन है, आपको नींद आ रहा है तो आप खड़े हो जाइए, नम्रता से खड़े होइए और कथा सुनिए, तो आपको दिव्य लाभ होगा उसका, कथा का। क्योंकि कथा में जितनी भी कथाएं हमने पढ़ी है इसके बारे में, हर एक के एंड में लिखा है कृष्णदास कविराज आशीर्वाद देते हैं फलश्रुति कि इनमें से कोई भी कथा आप सुनेंगे तो सुनने वाले को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, बहुत ही जल्द श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त होगा, ऐसे कविराज गोस्वामी बताते हैं। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, नींद आ रही है तो नींद आती है, स्वाभाविक है, शरीर तो है, लेकिन नींद आने के बाद आप क्या करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। वो कृष्ण को विश्वास दिलाते हैं कि आपको सुनना है और आप किसी भी कीमत पर सुनना चाहते हैं। तो क्या कह रहा था मैं, श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ सुना वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। गदाधर पंडित बैठ के पढ़ते थे और इतने प्रेम से भागवत का वर्णन करते थे, पढ़ते नहीं थे वो, वर्णन करते हैं बहुत प्रेम से। और वो सुनकर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वो सुनकर चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं और नृत्य करते हुए अति आनंद में विभोर होकर सुन रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, उनको आनंद हो रहा है, हमको नींद आ रही है। यही दिव्य भक्त और संत और हमारे अंदर फर्क है। तो जैसे ही गदाधर पंडित कथा बताना शुरू करते हैं, चैतन्य महाप्रभु उठ जाते हैं और नृत्य करते हैं और गोल गोल घूमते बेभान होकर, फिर वो ध्रुव महाराज की कथा समाप्त हो जाती है। महाप्रभु कहते हैं दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ। हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभु ये तो कथा हो गया, दोबारा क्यों बता रहे हैं आप, दूसरी बताओ अभी। फिर वो प्रहलाद की कथा बताते थे और प्रहलाद चरित्र सुनाते थे, तो ऐसे कहा है कि एक एक बार सौ सौ बार सुनते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, बोले और बताओ और बताओ, इसमें इतना अमृत भरा हुआ है कि मुझे एक बार सुनकर इसका आनंद पूरा नहीं हो रहा है, आप दोबारा बताओ। तो ये वो जगह है जहां पर भाव विभोर होकर नृत्य करते हुए अनेकों सैकड़ों बार चैतन्य महाप्रभु ने ध्रुव लीला और प्रहलाद लीला सुनी है। दिस इज दैट प्लेस। तो हम सब लोगों को यहां पर बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, कब हमारे कब हमारे मन में आत्मा में वो उत्सुकता निर्माण हो गई जैसे आप यहां पर नृत्य करके सुना करते थे। When that day will come, कि मेरे भूख प्यास नींद सबका वेग नष्ट हो जाए, मेरा आलस्य नष्ट हो जाए, मेरा मन यहां वहां भटकता है वो विक्षेप नष्ट हो जाए और केवल आपकी कथा में मेरा दिल लग जाए। क्योंकि भगवान की जो कथा है वो भगवान से अभिन्न है, नाम रूप लीला धाम ये चार चीजें जो हैं वो भगवान से अभिन्न है। तो जब भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो भगवान स्वयं उस लीला के श्रवण के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान की लीला सुनने से हम सबका भाग्य उदय होता है, हम सबके पाप कर्म दूर भागते हैं, हम सबके आत्माओं में जो दाग गिरे हुए हैं, जो आवरण पड़े हुए हैं अनेक जन्मों के पापों के, सब नष्ट हो जाते हैं और हमारे भाग्य का उदय होता है। ऐसी कथा में शक्ति है। कथा का और भी एक नियम है, कथा कौन कर रहा है, हम जैसा पापी कर रहा है फिर भी कथा कथा अपने आप में स्वयं पूर्ण है, इसलिए कथा सुनते समय भेदभाव नहीं करना चाहिए, कौन बता रहा है, अच्छा ये बता रहेगा चलो चलना है आज वो कथा कर रहे हैं, अच्छा ये बता रहेगा जाने दो आप चाय पियेंगे बैठ के आराम से टीवी देखेंगे। भाव ये होना चाहिए भक्त के अंदर कि मैं कथा सुनने जा रहा हूं और वो कथा अपने आप में परिपूर्ण है। अगर आपका ये भाव है तो एक नौसिखिया भक्त से भी आपको दिव्य अनुभूति वाला प्रवचन मिलेगा। क्योंकि कथाकार की एक स्थिति ऐसी होती है कि वो तो तैयारी करके आता है अपनी अपनी, लेकिन उसके मुख से वही निकलता है जो श्रोताओं की योग्यता है, जो श्रोताओं की आवश्यकता है, श्रोताओं की उत्सुकता है, श्रोताओं की योग्यता है, श्रोताओं का भाव है, उसके अनुसार भगवान उस वक्ता से बोलते हैं। यानी कि द ऑडियंस ड्रॉज फ्रॉम द स्पीकर। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ बहुत बढ़िया सुनना है, तो आप अपना भाव पहले रेडी करके आइए, अपना पात्र रेडी करके आइए, फिर वो पात्र में भगवान कृपा का दान देंगे। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया है तो किस तरह से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। आई कैन नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति प्रहलाद चरित्र को, ध्रुव चरित्र को सैकड़ों बार कैसे सुन सकता है। उसका उत्तर भी है कि श्रीमद् भागवत ये अथा सागर है, आनंद का सागर है, जिसका गहराई किसको पता नहीं है, जिसका विस्तार किसको पता नहीं है। इसलिए आप जितनी बार जीवन में, जब आप 5 साल के थे तभी सुना था, 50 साल की उम्र में सुन रहे और 75 साल के सुन रहे, आपको नई नई अनुभूतियां मिलेंगी उसके अंदर। वही लीला है, सबको बाय हार्ट है। हाँ, इंडिया का भाग्य ऐसा है कि बच्चे बच्चे को कथा पता है। आपको पता है प्रहलाद का चरित्र? बिल्कुल पता है, लेकिन उसमें कथा में जो अनुभूतियां छुपी हुई है वो आपको हर दिन, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते अलग अलग मिलेगी। और नित्य नव नवाया मान होता है, कभी भी आपको बोर नहीं होगा। अरे ये वही क्या सुना रहे, अरे बोलो। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है वो बताना जरूरी है यहाँ पर थोड़ा। श्रीमद् भागवतम जो है वो व्यासदेव ने जो सब कुछ लिखा, उनको जब भ्रम हुआ, दुख हुआ, आनंद प्राप्त नहीं हुआ गुरु की सेवा करने के पश्चात, बहुत कुछ लिखने के बाद भी उनको समाधान नहीं हुआ, तो नारद मुनि का दर्शन हुआ, उन्होंने उनको आज्ञा दिया, आपने जितना भी कुछ लिखा है वो तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक श्री कृष्ण का वर्णन, लीलाओं का गुणगान उसमें नहीं है। आपने बहुत सिद्धांत लिखा होगा, बहुत आत्मा परमात्मा तत्वों का वर्णन किया होगा, लेकिन जब तक आप लिखे हुए शास्त्र में श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर श्रीमद् भागवतम का लेखन हुआ, नारद मुनि को समझ में आया कि मैंने क्या, व्यासदेव को समझ में आया कि मैंने क्या, उसमें दोष क्या है उसके अंदर। तो फिर वो हिमालय में अपने गुफा में गए सरस्वती नदी के किनारे में, और फिर जो उन्होंने लिखा उसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम। वेद अगर वृक्ष के रूप में है तो श्रीमद् भागवतम उसका अंतिम फल है, अंतिम परिपक्व फल है, जिसमें न केवल भगवान का लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र का वर्णन भी किया गया है। और पहले भक्तों का चरित्र का निर्माण वर्णन होता है, उसके बाद दशम स्कंद में भगवान के चरित्र का वर्णन होता है, और उसके बाद और 2 स्कंद है 11-12, और 12वें स्कंद के बाद में ऐसे कहा गया है जो भी पूरी भागवत पढ़ता है वो इस जीवन के ही अंत में भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। तो विश्व के सबसे जितने भी शास्त्र हैं उन सब में श्रेष्ठ शास्त्र जो है श्रीमद् भागवतम है, अमलम पुराणम। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई गुणों का दोष नहीं है, कोई सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का दोष नहीं है, वो दिव्य गुण में स्थित है, उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई ऐसा ये करने पर शादी होगी, वो करने पर धन आएगा, वो करने पर घर मिलेगा, ऐसा कोई फलश्रुति उसके अंदर नहीं है। और कुछ कुछ जगह पर श्रीमद् भागवत में ऐसी भी फलश्रुतियाँ लिखी गई है कि ये पढ़ेंगे गजेंद्र मोक्ष का 8वां स्कंद में तो जिसको निद्रा का विकार है वो नष्ट हो जाएगा। हाँ, बुरे सपने आते हैं, नींद में घबर के डर उठ जाते हैं, वो अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो उनको शांत निद्रा आएगी। तो आपने कहा, आप पूछेंगे अरे अभी तो बताया तो अमल पुराण है, उसके अंदर कोई ऐसा कुछ लेन देन का हिसाब किताब नहीं है उसके अंदर वो इसलिए है कि जब श्रीमद् भागवत बताया गया तो उस सभा के अंदर कई प्रकार के लोग थे, अलग अलग टाइप के, शुद्ध भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे, कर्मकांडी भी थे, योगी भी थे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे। तो उन्होंने सब लोगों को इसमें आकर्षित रखने के लिए कुछ कुछ फल बताए और सब लोगों का इंटरेस्ट ऑन रखा उन्होंने। तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर। तो जो लोग कुछ भावना से आए कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, उनके लिए भी उन्होंने फलश्रुति दे के रखा है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, उनको इसका फल जो मिलेगा, ये पढ़ने के बाद ये मिलेगा, वो पढ़ने के बाद वो मिलेगा, उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का सुनने का और कहने का एक ही पर्पज़ है, वो है भगवान का प्रेम, और कोई पर्पज़ नहीं है। ओनली वन पर्पज़, टू डेवलप लव फॉर गॉड। और श्रीमद् भागवत का कोई पर्पज़ नहीं है जिसके लिए वो बनाया गया है। श्रीमद् भागवतम तक पहुंचने के लिए भी बहुत जन्मों के पुण्य की आवश्यकता होती है। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए श्रीमद् भागवतम क्या है। इसका परिचय होने के लिए भी अगर आप बस पुराने जमाने के अच्छे अच्छे पुण्य कार्य नहीं है तो आपको श्रीमद् भागवत का परिचय भी नहीं होगा। अगर आपको एक्सीडेंटली श्रीमद् भागवतम सुनने को मिल रहा है तो समझ लेना कि आपने पहले जन्म में बहुत सारे पुण्य का योग्यता प्राप्त कर चुका है। इसके फल के रूप में आपको श्रीमद् भागवतम का सुनने का मौका मिल रहा है। और जो श्रीमद् भागवतम में सही प्रेम आकर्षण रुचि उत्पन्न करता है प्रयत्नपूर्वक, वो बड़ा भाग्यवान जीव है, क्योंकि उसके लिए कृष्ण प्रेम की प्राप्ति निश्चित है अगर उसमें रुचि पैदा की। हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में परम पूज्य राधा गोविंद जी महाराज हैं। सब महाराजों ने भागवत में रुचि लिया, लेकिन वो राधा गोविंद जी महाराज ने विशेष रूप में श्रीमद् भागवत में, वो कहते ना हमेशा अथाह सागर हमेशा डूबते रहते हैं उनके अंदर। जहां जाते हैं वहां पर और गहराई में, और गहराई में, और विस्तार में, और विस्तार में श्रीमद् भागवत का वर्णन करते रहते हैं। उनका स्टाइल कैसा है, वो 7 दिन में पूरा भागवत नहीं करते हैं, वो एक लीला लेते हैं, एक लीला उसमें से, और वो 7 दिन तक कई घंटों तक बताते रहते हैं पूरे विस्तार में। कारण क्या है कि हम लोगों को रिचुअल नहीं करना है, कोई कर्मकांड नहीं करना है कि 7 दिन के अंदर फिनिश करना है तो इतना इतना पुण्य मिलेगा, ये कार्य नहीं है। श्रीमद् भागवत के श्रवण से जितने हमारे रिश्तेदार भूत प्रेत होकर लटक रहे हैं, वो उनका पाठ करने से वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसा सब महात्म्य है श्रीमद् भागवतम का, जितना कहे उतना कम है। शिवजी ने पार्वती को उसका महात्म्य सुनाया है, पूरा ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, केवल महात्म्य है इसका। व्यासदेव ने अपनी पत्नी को सुनाया है, शिवजी ने पार्वती को सुनाया है, सुखदेव ने परीक्षित महाराज को सुनाया है, और सुत गोस्वामी ने शौनक जी को सुनाया और 88,000 वक्ताओं को सुनाया है। और पूरा श्रीमद् भागवतम 2 वक्ता और श्रोता का संभाषण है, पूरा कंप्लीट 2 जन बात कर रहे हैं, उनका रिकॉर्डिंग किया गया है, और वो श्रीमद् भागवत के रूप में आपको उपलब्ध है। ये सब बताने का यह महत्व क्यों है कि इसी जगह पर वो महात्म्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने कार्यों से प्रकट किया है, नृत्य करते हुए सुनते हुए प्रकट किया है, इसलिए बताना मुझे जरूरी लगा। तो श्रीमद् भागवतम इस्कॉन संस्था में बहुत ही विस्तार रूप में, बहुत ही साइंटिफिक रूप में लिखा गया है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी, आप सबको पता होना चाहिए, हमको तो दिन में भी, रात को सोने के बाद भी दिन में भी नींद आती है। हाँ, डोंट फील बैड, मैं आपको टिका नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमको तो दिन भर में, रात को सोने के बाद भी दिन में नींद आती है। प्रभुपाद जी दिन भर मेहनत करते थे, ये प्रवचन करो, ये मंदिर का देखभाल करो, यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है, ये करना है, वो करना है, इनको मिलना है, यहाँ समस्या है समाधान करना है, यहाँ रथ यात्रा है, यहाँ पर जन्माष्टमी है, ऐसे भ्रमण करते थे दिन भर। और रात को जब सब लोग थक के सोते थे तो हमारे प्रभुपाद जी उठते थे, 2 घंटा या 3 घंटा सोते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि मेरी वृद्ध अवस्था है और कभी भी मैं जा सकता हूँ, मेरा बहुत लिखने का काम बाकी है, और दिन भर का मैनेजमेंट करते 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 प्रवचन भी करना है, मैनेजमेंट करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो लिखेंगे कभी तो बोले एक ही टाइम है, जब दुनिया सोती है, कोई मिलने को नहीं आने वाला है, उस समय मैं लिखूंगा। 12 साल पहले तो 63 to 66 उन्होंने वृंदावन में लिखा। कैसे लिखा? ऑलमोस्ट 24 आवर्स वॉज राइटिंग, ऑलमोस्ट 24 आवर्स। अपना खाना पीना भी बाहर पड़ा रहता था, दामोदर जी के मंदिर में राजभोग का थाली बाहर पड़ा रहता था, दोपहर में आया हुआ, वो रात को बाहर निकलते थे 8 बजे और फिर उसको खाते थे, मतलब भान भी नहीं है उनको, होश नहीं है भूख प्यास का। वो पहला स्कंद उन्होंने उस भाव में लिखा, फिर फिर जब संस्था शुरू हो गई तो इतने काम बड़े, अरे ये बांध काम करना है, पहले फंड रेजिंग करना है, डीओडी को प्रॉब्लम हो रहा है, उनको गाइड करना है, सबको लेटर लिखने हैं, उधर तो ईमेल नहीं था उस समय। तो रात को जगते थे, 10-11 बजे रात को उठते थे और 4 बजे तक लिखते थे जब दुनिया सो रही है, फिर 4 बजे डंडा लेकर अपने भक्तों को जगाते थे, उठो अभी मंगल आरती का समय हो गया है, फिर उठाते थे और फिर मंगल आरती होती थी और प्रभुपाद जी पूरी मंगल आरती, फिर वॉक मॉर्निंग का, फिर दर्शन आरती, फिर खुद का भागवतम प्रवचन, फिर लेटर राइटिंग, फिर ये करके पूरा दिन भर बिजी बिजी बिजी, रात को सोने का समय हो गया, 2 घंटा सो के फिर 11 बजे उठते थे। प्रभु जी और माता जी हो, भाइयों और बहनों, ये ध्यान रखना कि ये जो उन्होंने लिखा है ना, अपनी निद्रा को त्याग करके लिखा है। आपको कितना भी प्रेम होगा, एक माता ऐसी है कि वो बच्चे के लिए जग जाती रात को दूध पिलाने के लिए, वो साफ करने के लिए उसको, फिर भी ऐसे परेशान रहते वो, भी आंखें आधी आधी मुझती रहती, गिरती रहती है वो, क्या करे, शरीर ही ऐसा है, वो कोई दोष नहीं है, प्रेम तो बहुत है लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। उसके अलावा कोई जगता नहीं रात को, डॉक्टर जगता है पेशेंट के लिए लेकिन वो भी बहुत, अरे रात को कॉल आया भैया क्या, अरे रात बिगड़ गई मेरी, मंगलाती जाने का प्लान था वो फ्लॉप हो गया। अभी कोई भी प्रेम से आनंद से ऐसा, वाह मेरा बच्चा जग गया रात को, अभी साफ करूंगा मैं उसको, अभी उसको पेशाब हो गया, अभी मैं उठूंगा और चेंज करूंगा, ऐसे कोई आनंद से बरो को उठता नहीं है, कष्ट से ही उठता है। लेकिन प्रभुपाद जी इतने प्रेम से, इतने करुणामय प्रेम से लिखते थे, ऐसे नहीं कि लिख रहे और वो 2 श्लोक लिखा और ये सो गए उधर ही, फिर उठे अरे कितना 3 बज गया, अरे तो 1 ही श्लोक लिख रात को आगे लिखते, ऐसा नहीं है, पूरा आनंद के साथ। और आनंद वो किस पर आधारित है उनका आता आनंद, हम जैसे जो बद्ध जीव करोड़ों की संख्या में दुनिया में दुख भोग रहे हैं, उनका विचार उनके मन में है कि ये उनका उद्धार कैसे होगा, श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत होगा उनकी भाषा में, उनको समझने सब विस्तार में उसका वर्णन, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, तो ये कलयुग के बद्ध जीव जो है उनकी मति मारी गई है, मति भ्रष्ट हो गई है, उनको समझ में आएगा, ऐसी भाषा में लिखूंगा तब वो पढ़ेंगे, तब वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। और मुझे ये शरीर छूटने के पहले उसको फिनिश करना है, 18,000 श्लोक है वो, 12 स्कंद है, आज भी वो 18 वॉल्यूम में लिखा गया, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स है उसके, 18 वॉल्यूम्स है, लोग तो ना वो वॉल्यूम को देख के डर जाते हैं, मैं जब बताता हूँ कि ले लो इसको, बोले 18 वॉल्यूम। एक जगह पर मैंने उसको, मेरे एक फ्रेंड को, अभी ना 20 साल पहले की बात है, मेरे बड़े भाई के फ्रेंड थे वो, क्लासमेट थे, उनको मैंने एक भागवतम सेट दिया, उन्होंने बड़े प्रेम से लिया, उस समय 30 खंड वाले भागवतम उपलब्ध थे, छोटे छोटे 30 सिंगापुर प्रिंट। तो जब वो घर पे गए ना भागवतम उसके, जब डिलीवर किया गया तो माता का और पुत्र का बड़ा झगड़ा हो गया, जोरदार झगड़ा हो गया, बोले क्या पागल हो गया क्या, इतने बड़े ग्रंथ पढ़ेगा तू सन्यास लेगा, तू सन्यास पत्नी को बच्चे को छोड़कर चला जाएगा। शी वॉज रियली वरीड कि मेरा बालक इतने ग्रंथ पढ़ेगा इतने गहराई में तो सब कुछ छोड़ के विरक्त होकर निकल जाएगा वो। ने बहुत समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें स्टोरी किसकी है, अर्जुन की, वो भी गृहस्थ था, ध्रुव महाराज भी राजा था, प्रहलाद महाराज राजपुत्र था, सब बताया उनको। अरे वो कृष्ण भगवान तो वो बहुत पत्नी वाले थे, 16,108 पत्नियां थी उनकी लेकिन माता के मन में नहीं आया वो बहुत झगड़ा हो गया। फिर भी फिर लड़के ने क्या किया, अपने दूसरे घर में उसको रख दिया भागवतम में, मेरी उम्मीद है कि वो पढ़ा होगा उसने उसको। तो कहने का मतलब यह है कि इतने विस्तार रूप में, इतनी बड़ी संख्या में श्लोक लिखकर उसमें जो प्रस्तुत किए गए हैं, उसको पढ़ने के लिए भी एक भक्त के अंदर थोड़ी तैयारी होनी चाहिए मन की। जैसे हम लोग मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें होती हैं उसके, अरे बाप रे, वजन के लिए भी डंबल उठाना पड़ता है पहले, फिर वो किताब एनाटॉमी की और पढ़ सकते हैं उसको। तो मेडिकल में जाने के पहले मन की तैयारी करनी पड़ती है कि अभी तक मैंने इतनी इतनी किताबें पढ़ी है, अभी मुझे इतनी इतनी किताब पढ़नी है। उस तरह से श्रीमद् भागवतम भगवान के नाम का जप, हाँ मांस छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, अभी मांसाहार खाते हैं, अभी जप भी करने लगते हैं, ये सब करने के बाद में अगर आपको आगे बढ़ना है तो भगवत गीता पढ़नी होगी। उसके आगे अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करना है आपको, भक्ति में अपने आप को मग्न करना है, तो श्रीमद् भागवत आपके लिए है। केवल रस का सागर है वो, भगवत गीता तो केवल सिद्धांत है, उसके अंदर नियम बताए कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए आदमी को, नियमावली है वो सिद्धांत के आधार पर, लेकिन भागवतम जो है ना वो रस का सागर है। उसके अंदर कथा रूप में आपको जीवन की दिव्य चेतना, जीवन का दिव्य साक्षात्कार का वर्णन किया उसके अंदर। इसलिए मैं आपको सबसे अनुरोध करूंगा, आप इस जगह बैठे हो सब लोग हाथ जोड़िए और सब लोग चैतन्य महाप्रभु को और गदाधर पंडित को प्रार्थना कीजिए कि आपको गदाधर पंडित जी आपको जो कहने में उत्साह था और चैतन्य महाप्रभु आपको जो सुनने में उत्साह करके आपने उदाहरण दिया, वो हमारे अंदर भी कभी एक अंश रूप में प्रकट हो जाए और इसी जीवन में हम श्रीमद् भागवत को पूरा उत्साह के साथ पढ़ सकें, समझ सकें, आचार्यों के द्वारा जो साक्षात्कार लिखे गए हैं उसको समझ सकें और जीवन में उतार सकें, क्योंकि केवल शुद्ध भक्तों का और भगवान की लीलाओं का वर्णन उसमें दिया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब ये मूर्ति बैठी क्यों है? पहले तो भगवान कैसे प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु ने खोद कर उनको निकाल दिया और यहाँ पर रखा, उसका वर्णन हुआ। उसके बाद में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 48 साल जीवन उनका पूरा होने के पश्चात, 18 साल यहाँ के पूरे होने के पश्चात एक दिन रोज की तरह यहाँ पर आए और नृत्य करने लगे। नृत्य करने के बाद में सब लोग चले गए और भगवान अंदर चले गए, अंदर चले गए, दरवाज़ा बंद कर लिया। जब दरवाज़ा खोला गया तो भगवान नहीं थे, भगवान इसी मूर्ति के अंदर अंतर्धान हो गए और जो बैठे हुए हैं उनके राइट जो जंघा है, मतलब जो राइट क्या कहते हैं घुटना है, घुटना, वो घुटने में एक छेद है, उस जगह से वो गोपीनाथ जी के शरीर में प्रवेश किए। सब लोग दुखी हो गए बहुत कि भगवान अचानक अंतर्धान हो गए, तो सब भक्त लोग विरह में गए, दुख में गए और गदाधर पंडित बहुत अति विरह में चले गए। और ऐसे कहे कि जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए तो गदाधर इतने बूढ़े नहीं थे, मध्यम अवस्था में थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत दुख जब होता है जीवन में, बहुत कड़ा दुख होता है तो आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। आप देखते हैं ना, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरा ऐसा लटकता लगता है, शरीर में शक्तिहीन हो जाते हैं। प्लीज गिव वे टू देम, मैं बार बार विनती कर रहा हूँ, आगे आइए आप, हमारे यहाँ होने से यहाँ के सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार से, यहाँ के भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए। सब लोग आगे बैठे, रास्ता दीजिए उनको, हाँ भगवान के भोग जा रहे हैं अभी। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ तो गदाधर पंडित जो है ना बहुत जल्दी बूढ़े हो गए, बहुत जल्दी, मानो 90 साल के बूढ़े हो गए ऐसा लग रहा था उनको देख के, इतना बूढ़े हो गए कि उनको जरा माने कि बुढ़ापा इतना घुस गया शरीर में उनके कि वो कुछ देर बाद में तो हाथ भी हिला नहीं सके, हाँ वो उठ भी सकते नहीं थे। और रोज़ वो अपने हाथों से माला बनाकर भगवान का श्रृंगार करते थे, उनको नहलाते थे, उनको भोग लगाते थे, भोजन बनाते थे, वो धीरे धीरे उनको बहुत कष्ट होने लगा उनको बनाने में। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ भगवान को माला पहनाने के लिए श्रृंगार में, तो अभी तो मैं अयोग्य हो गया। तो उन्होंने अपने शिष्यों को और अपने अनुयायियों को बताया कि अभी मैं तो नहीं कर सकता, अभी आप लोग करो, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हो गया अभी। उस रात में गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में आए, उन्होंने कहा क्योंकि मेरी सेवा आप छोड़ रहे हो, मेरी इच्छा है कि आप ही मेरी सेवा करो और देखो मैं क्या करता हूँ आपके लिए ताकि आपकी सेवा हो जाए, क्योंकि उठ ही नहीं पाते थे, बैठे बैठे ही जितना क्या करे, कमर तक पहुँच रहे भगवान के, सर तक तो नहीं पहुँच रहे। तो अगले दिन जब वो सेवा करने गए तो ऐसे कोशिश कर रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ से मतलब ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, तो झट से भगवान बैठ गए नीचे, बैठ गए और पलटी मार गए, पद्मासन में बैठ गए और फिर माला पहनाया उन्होंने। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त के लिए उनके हृदय की तीव्र इच्छा के अनुसार एक प्रतिसाद दिया, रिस्पांस दिया। हम लोग सोचते क्या भगवान कर रहे हैं, कुछ सोचते कि नहीं हमारे बारे में, भगवान तो हमको भूल गए, वो तो देखते नहीं हमारी तरफ, क्या भगवान कहाँ पर हो आप। लेकिन एक प्रामाणिक भक्त के लिए भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं। हो सकता है आप सबको उनका दर्शन न हो प्रत्यक्ष, लेकिन आपके जीवन में जब आप भगवान के नाम का जप करते हो आपके जीवन में भगवान निश्चित रूप से आपके जीवन में आपका उनका हाथ दिखाई पड़ेगा आपको। जैसे मतलब हाथ दिखने का मतलब क्या होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट, जब हम एक बार भगवान का नाम लेते हैं और उसके आगे नाम जप करना शुरू कर देते हैं, आप भगवान की गोद में आते हैं। उसके बाद माया देवी आपका नियंत्रण नहीं करते हैं। आपके जीवन जो भी कर्मों का फल है, जो शुद्धिकरण है, जो भी आपका प्रोग्रेस है, वो सब फाइल भगवान के पास पहुंचता है। जब तक भगवान का भक्त आप नहीं है, तब तक माया देवी आपको आपके कर्म के अनुसार दंड देती रहती है। बस उनका फाइल कोई कृपा के साथ चलता नहीं है। लेकिन एक बार भगवान का नाम आप लेते हो, एक बार भगवान के धाम में पहुंचते हो, तब आपका फाइल भगवान के पास पहुंचता है और माया देवी को कुछ अधिकार नहीं उसके अंदर। भगवान फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो जो है वो रखते हैं, जरूरत है जो नहीं है उसको डिलीट कर देते हैं। माया देवी उसको डिलीट नहीं कर सकती है, एक भी आइटम उसका। कृष्ण भगवान अपने अधिकार में उसमें क्या क्या जरूरी है उसको निकाल सकते हैं, उतना ही रखते हैं कष्ट आपके लिए जो आपके शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, उतना रखते हैं। और आपका शुद्धिकरण भी जो आपको पीड़ा के रूप में आता है, वो भी उनके नियंत्रण में, निर्देश में होता है, सुपरविजन में होता है। इसलिए आप चिंता मत करना। एक बार भगवान को आपने बोला है कि मैं आपका हूं, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर ओन, आपनार बोली, मुझे अपना बना लीजिए। उस एक बार बोल के तो देखिए, आप एक बार बोलिए उनको कि भगवान मुझे अपना बना लो, मैं भी किसी का और बनना नहीं चाहता, ना देवियों का, ना देवताओं का, ना इसका ना उसका, मैं केवल आपका बनना चाहता हूँ। हाथ जोड़िए और बोलिए कि मैं आपका बनना चाहता हूँ, मैं आपकी बनना चाहता हूँ, तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। उसके बाद विश्वास रखना, जो भी कष्ट आएंगे, जो भी सुख आएगा, जो परेशानी आएगी, उनके निर्देश में और उनके सुपरविजन में आएगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी थे, इसलिए उनको ऐसा दिव्य प्रतिसाद मिला। शायद हमको ऐसा ना मिले, लेकिन आपको निश्चित रूप से विश्वास रखना चाहिए कि आपका जीवन भी उनके खतेले में है। बड़े प्रेम से आपको वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी ओर, उनके धाम की ओर, उनकी सेवा की ओर बढ़ा रहे हैं। ये जीवन इसी के लिए है। एक ही बाधा इसमें आ सकती है, ये आप कह दिया आज, उन्होंने आपको स्वीकार भी कर दिया और आपकी प्रगति हो भी रही है, एक उसमें बाधा आ सकती है। बताइए क्या हो सकती है बाधा? वो एक बाधा है, वैष्णव अपराध। अगर आप इस प्रक्रिया के बीच में अगर वैष्णवों का अपराध करने लगेंगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ मामला हो जाएगा, फिर हमारी प्रगति नहीं होगी, फिर और दंड मिलेगा हमको। क्योंकि भगवान का एक ही प्रॉब्लम है, भगवान अपने भक्त पर बहुत प्रेम करते हैं। कैसा भी वो आपको लगता होगा, क्या है ये भक्त है, इसमें क्या है, कुछ गुण नहीं, कुछ नहीं है, इतना पापी भक्त है ये, ऐसा लगेगा आपको आपके दृष्टि से। लेकिन भगवान केवल उसके अंदर जो भाव है उसके प्रति थोड़ा बहुत है उसको ही देखते रहते हैं। वो कभी भी उसको धुतकारते नहीं है, कितना भी बुरा अच्छा वो नाम लेता है मेरा तो वो उनका हो जाता है। उसमें अगर हम दोष देखते हैं और उसका अपराध करते हैं, फिर वो आपको फटका देते हैं अच्छी तरह से, वो भी प्रेम से देते हैं सुधारने के लिए। तो अगर हमको शीघ्र प्रगति करनी है भगवत मार्ग में, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से भगवान के भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए आपको, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से गदाधर पंडित को बड़े प्रेम से भगवान ने नीचे बैठकर आगे की सेवा करने का मौका दिया। और आगे जाकर जब गदाधर पंडित स्वयं अंतर्धान हो गए, तो वो भी गोपीनाथ जी के ही मूर्ति के अंदर विलीन हो गए, यानी कि राधा और कृष्ण दोनों ही गोपीनाथ जी के अंदर विलीन हो गए। बड़े अद्भुत मूर्ति है ये भगवान की। फिर मामू ठाकुर जी, इन्होंने उनका आगे का सेवा जारी रखा उनके जाने के पश्चात। यहाँ से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए। आप सबको पता होगा ये ऐसा भाग्यवान साल है, इस साल में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन गए, उसको 500 साल पूरे हो जाते हैं, हो गए, मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन 500 साल पूरे हो गए। और वृंदावन में बड़ा महोत्सव मनाया गया इस साल, बहुत बढ़िया महोत्सव मनाया गया। लेकिन यहाँ से वो बार बार सोचते थे कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, और कोशिश करते थे। लेकिन भक्त लोग उनसे इतने आसक्त थे, कहते हैं अभी जगन्नाथ जी का ढोले यात्रा उत्सव है, अभी वो ये मंडप का उत्सव है, अभी झूलन यात्रा है, अभी जन्माष्टमी है, ऐसे लाइन से एक एक आता था, अब ये करके जाइए, अब ये करके जाइए। उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि ये जाए नहीं, उनको पकड़ के रखे यहाँ पर। फिर भी एक बार निकल गए तो बहुत सारे भक्त उनके पीछे भी चलने लगे जगन्नाथपुरी छोड़कर। तो सनातन गोस्वामी ने उनको बताया, प्रत्यक्ष नहीं प्राइवेट में बताया, कि भगवान ऐसे इतना समुदाय लेके वृंदावन में जाना नहीं चाहिए, आपको नम्रता से एक भक्त को लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने लोगों को अनाउंस किया कि कैंसल मेरा वृंदावन का प्लान, वापस आ गए, वो सब वापस आ गए। तो एक दिन फिर गुप्त रूप में निकले वृंदावन जाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे हैं और गोपीनाथ की सेवा मिल रही है, इसलिए महाप्रभु चैतन्य का संग मिलता रहे, इसलिए उन्हें गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया। एक प्रकार का संन्यास होता है क्षेत्र संन्यास, उसका मतलब होता है कि आप उसी क्षेत्र में रहेंगे मरने तक। लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि महाप्रभु का संग यही रहेगा, मैं भी यही रहूँगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए उन्होंने वो क्षेत्र संन्यास ले लिया और यहीं रहकर सेवा करने लगे। और देख रहे हैं अभी महाप्रभु जा रहे हैं यहाँ से वृंदावन, तो उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो महाप्रभु बोले, अरे गदाधर तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, तुमको ये क्षेत्र छोड़ने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ना एक बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा वो श्लोक सुनकर। हाँ अभी ये वर्णन जरा ध्यान से सुनिए, जिसको नींद आ रही है वो खड़े हो जाइए, बहुत रोचक वर्णन है। तो गोपीनाथ जी की सेवा प्राप्त है उनको, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपीनाथ जी की सेवा आप छोड़ रहे हैं, गोपीनाथ जी कितने महान हैं, उनकी सेवा आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, पंडित को है यहाँ तुम्ही से ही नीलाचल क्षेत्र संन्यास मोरा यौकर असातल। वो कहते हैं आप अगर यहाँ से जा रहे हो तो मेरा क्षेत्र संन्यास जन्म में जाए। रसातल का मतलब क्या होता है, नरक। हम क्या कहते हैं, टू हेल विथ माई संन्यास। तो क्षेत्र संन्यास मोरा यौकर रसातल, जाओ जहन्नुम में जाने दो मेरे को उसको। राग बोलते ऐसा मत करो, आप आपके लिए अपराध हो जाएगा वो। तो वो कहते हैं गोपीनाथ का दर्शन करने से भी हजारों गुना अधिक लाभ मुझे आपके चरणों का दर्शन करने से होता है। ऐसे गदाधर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोटि सेवा तत् पाद दर्शन। गोपीनाथ की सेवा करने से भी मिलियंस ऑफ टाइम लाखों लाखों गुना लाभ केवल आपके दो चरणों को देखने से होता है। फिर वह कहते हैं प्रभु को है सेवा छाड़ी भी अमाय लाग दोष, यहाँ राही सेवा करो अमर संतोष। कि देखो ऐसा है, आप अगर मेरे पीछे पीछे आओगे तो आपके संन्यास को तोड़ने का जो दोष है उस पर आएगा, कि लोग कहेंगे कि देखो इनके पीछे चले गए वो, और आप यहाँ रहोगे सेवा करोगे तो मुझे वो संतोष होगा। फिर आगे बोलते हैं पंडित को है सब दोष अमर ऊपर, चिंता मत करना ये सब दोष मैं मेरे ऊपर ले लूँगा। आप चिंता मत, ऐलान करूंगा जनता के सामने कि मैं खुद जा रहा हूं, ये मुझे नहीं बुला रहे हैं। डोंट वरी। तुमा संगे ना याई बा याई बा एकेश्वर, आयके देखी ते याई बे ना याई बा तुमा लागी, प्रतिज्ञा से वा त्याग दोष तारा आमी भागी। ये जो प्रतिज्ञा तोड़ने का जो दोष होगा ना वो मैं ले लूंगा अपने ऊपर। एक बाली पंडित गोसानी पृथक चलीला, कटक आशी प्रभु तारे संग अनाइला। मतलब वो क्या हुआ, अभी बहुत बात बात हुआ तो क्या किया, महाप्रभु आगे चले गए और ये सब के पीछे अकेले चले गए। जब कटक पहुंचे दोबारा डिस्कशन शुरू हुआ कि आप इधर तक आ गए, क्यों आए आप इधर। कटक पहुंचे तो वे बोलते हैं प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी बे ए तो मारा उद्देश्य, से सिद्ध हाईला छाड़ी आईला दूर देश, हमारा संगे रोहिते चाह वांछा नहीं जसुख। वो कह रहे हैं अभी तुम, मैं समझ में आ जाए मुझे कि तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमको खुद का आनंद चाहिए, इसलिए तुम खुद के स्वार्थ की वजह से मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। मतलब ये भगवान के भक्तों की लीला है, वो ऐसा हृदय से नहीं बोल रहे हैं, वो जानते हैं कितना प्रेम है उनका। उनको उनकी लोगों के द्वारा निंदा ना हो जाए कि देखो 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 गदाधर पंडित इतना बड़ा भक्त भगवान का, देखो क्षेत्र संन्यास का नियम भी तोड़ दिया उसने, अपराध किया उसने। तो गदाधर पंडित के विषय में निंदा नालस्ती न हो जाए, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि हमारा संगे रोहिते चाह वांछा निज सुख, खुद का सुख चाह रहे हो इसलिए मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। हाँ मोरा सुख चाह यदि नीलाचल चलो, अगर वास्तव में मेरा सुख चाहते हो नीलाचल लौट चले जाओ। हमारा शपथ यदि आर किचू बोलो, अगर और कुछ करोगे तो मेरी शपथ है आपको। तो फिर वो समझ गए कि अभी भगवान बहुत नाराज हो रहे हैं, तो फिर लौट के आते हैं और लौट के आने के बाद बहुत दुख का अनुभव करते हैं। हाँ तो इसको शास्त्र में प्रेम विवर्त कहते हैं। एक तरफ का रास्ता होता है सीधा रास्ता भगवान का प्रेम प्राप्त करने का, और ये रास्ता उल्टा रास्ता है जिसमें भगवान बोल रहे जाओ जाओ जाओ, हम बोल रहे आता 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 हूँ आता हूँ आता हूँ आता हूँ, बोले जाओ 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 आप स्वार्थी हो जाओ चले जाओ, नहीं 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 मुझे आना है आना है आना है, नहीं नहीं आपको दोष लगेगा नहीं, ये जो वाद विवाद हो रहा है ना वो विपरीत है ना, वो उसको प्रेम विवर्त कहते हैं। एक होता है प्रेम आवर्त, तो सीधे रास्ते से भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त करते हैं, और ये जो भगवान के भक्तों का यहाँ पर का स्वभाव है वो दिव्य है। हाँ, तो ये लीला यहाँ पर हुई थी। फिर गदाधर बड़े अल्टीमेटली हमको समझना चाहिए गदाधर लौट के क्यों आए, बहुत गहरा विषय है ये। गदाधर का दिल तो भगवान के साथ था, वो कह भी रहे हैं कि आपके चरणों को देख के मुझे लाखों बार ज़्यादा लाभ होता है इनका सेवा करने से, फिर भी लौट के क्यों आए? क्योंकि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसकी संतुष्टि उनका समाधान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारा प्रेम होगा, हमारी इच्छा होगी, हमारा बहुत सारा भाव होगा, लेकिन सबसे ऊंचा भाव वो होता है कि जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता। ही हैज़ टू बी हैप्पी बाय माई सर्विस, ही शुड बी प्लीज्ड, आई डोंट वॉन्ट टू प्लीज माई सेल्फ। मुझे दुख भी होगा तो भी मेरे प्रियतम को, मेरे सेव्य भगवान को मैं संतुष्ट करूँगा। तो उसी भावना को जताते हुए हमारे सामने एक उदाहरण बनाते हुए गदाधर पंडित लौट के आए। तो ये एक लीला यहाँ पर हुई है। उसके बाद में नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए। कल कुछ मुझे कोई बताया किसी ने कि नित्यानंद प्रभु की कहानी नहीं बताई आपने। तो एक बार यहाँ पर नित्यानंद प्रभु वृंदावन जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथ मंदिर गए, वैसे ही भाव विवर होकर बेहोश हो गए नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु वहाँ से महाप्रभु जी को मिले और महाप्रभु जी उनको यहाँ पर लेके आए। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसे कहते 40 किलो बहुत ही दिव्य बासमती राइस लेके आए थे वो गोपीनाथ की सेवा के लिए, गदाधर को देने के लिए, और भी बहुत सारे व्यंजन लेके आए वो यहाँ पर। तो गदाधर ने देखा उस चावल को, बोला कि नित्यानंद प्रभु ये कहाँ से लेके आए आप, स्वर्ग से लेके आए कि गौलोक से लेके आए, इतना सुगंधित चावल मैंने कभी दर्शन नहीं किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो गदाधर पंडित ने वो चावल को भगवान के लिए बनाया, उसका दिव्य सुगंध सब जगह फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को बैठ के उसका सेवन कराया। फिर गदाधर पंडित ने भागवत सुनाया और दोनों ने नृत्य करते हुए उसको सुना। ऐसा दिव्य आनंद नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित ने यहाँ पर लिया, कृष्ण बलराम और राधा रानी के अवतार हैं सब। फिर यहाँ पर एक बार एक स्त्री गीत गोविंद का गायन कर रही थी। गीत गोविंद का थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा है कि 8वीं सदी में जयदेव गोस्वामी ने इसको लिखा है, और जयदेव गोस्वामी जब ब्रह्मचारी थे तो वो जगन्नाथपुरी में थे, कड़े कड़े ब्रह्मचारी व्रत में थे, एक कुटिया में रहते थे। एक ब्राह्मण था, उसकी कन्या थी, वो रोज जगन्नाथ को जाके प्रार्थना करता था कि मुझे मेरी कन्या का विवाह कर दो। तो जगन्नाथ ने उसको स्वप्न दिया और बताया कि वहाँ वहाँ एक जगह पर एक ब्रह्मचारी रहता है, उसके पास जाओ और अपनी कन्या को उसको दे दो। रात को जयदेव के सपने में भी आए, उसकी कन्या का नाम था पद्मावती। रात को जयदेव के सपने में आए, जगन्नाथ जी बोले कल सवेरे एक ब्राह्मण आएगा अपनी कन्या को लेकर, उसका नाम पद्मावती है, उससे विवाह कर लेना। तो सपने में उसने बहस किया, भगवान मैं तो ब्रह्मचारी बनने के लिए यहाँ पर आया था, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, मेरी आज्ञा है पद्मावती से विवाह कर लेना। क्या करे, भगवान का भक्त भगवान शरणागत होता है, आया था ब्रह्मचारी बनने के लिए लेकिन भगवान की इच्छा है विवाह कर लो। नेक्स्ट डे बराबर पक्का आदमी सुबह फाजिर कन्या को लेके, अरे कन्या है ये दहेज है ले लो, स्वीकार करता है। फिर भगवान की आज्ञा होती है दोबारा कि मायापुर चले जाओ, तो मायापुर चले जाता है। तो चंपाहाटी नाम की जगह है ना, चंपाहाटी, तो चंपाहाटी नाम की जगह यहाँ पर चंपक लता का कुंज है, वहाँ पर चंपा के फूल निकलते हैं और वो माला बनाकर चंपा देवी चंपक लता भगवान की सेवा करती है। तो वहाँ पर वो निवास किया उन्होंने, और उनकी पत्नी पद्मावती हर रोज चंपा के फूल निकाल कर माला बनाकर वहाँ के भगवान की सेवा करती थी। उनके भगवान का नाम था राधा माधव जी, हाँ राधा माधव जयदेव गोस्वामी। तो वो चंपाहाटी में जो उनका निवास था, राजा ने उनको बना दिया था, पहले उन्होंने मना कर दिया, बाद में राजा को कृपा करके महल बनाने दिया, वो झोपड़ी जो भी घर बनाया उनका। पद्मावती को वहां पर साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, हरे कृष्णा। टाइम हो रहा है क्या? ओके हाँ, तो चंपाहाटी में ये गीत गोविंद का लेखन चैतन्य महाप्रभु, सॉरी जयदेव गोस्वामी कर रहे थे। तो लेखन करते करते एक घटना हुई ऐसी कि वो आगे लिख नहीं पाए, बड़ी विचित्र घटना है उसके अंदर। तो बंद करके वो नदी में स्नान करने गए, तुरंत लौट के आए, पत्नी को बोला भूख लग रही खाना खिलाओ, पत्नी ने खाना खिलाया, अंदर गए, वो श्लोक जो अधूरा था उसको पूरा किया, वो चले गए वापस बाहर। आधा एक घंटा होने के बाद दोबारा लौट के आए, पत्नी को बोले पद्मावती जी भूख लग रही है खाना खिलाओ, तो पद्मावती बोलती अरे अभी तो आए थे, पूरा भोजन किया आपको मैंने, पूरा खाना खाया आपने, अंदर गए कुछ लिखा आप, लौट के आए, दोबारा खाना क्यों मांग रहे हो? बोले मैं तो नहीं आया, मैं तो एक बार गया तो अभी वापस एक ही बार आ रहा हूँ, बीच में बहुत देर तक स्नान किया मैंने। तो अंदर जाके देखते हैं तो जो श्लोक अधूरा था वो पूरा लिखा हुआ दिखाई पड़ा उनको, पूरा किया हुआ दिखाई पड़ा, Somebody has completed। तो बाहर भाग के आए, पद्मावती तुम तो बड़े भाग्यवान हो, स्वयं कृष्ण ने आकर ये श्लोक पूरा किया है, तुम कितनी, पत्नी का दंडवत करते हैं कि तुम तो बड़ी भाग्यवान हो, मैं तो लिख रहा हूं मुझे दर्शन नहीं हुए, तुम्हें भगवान दर्शन करके सेवा देके तुम्हारे हाथ से भोजन करके चले गए। ऐसी दिव्य लीला वहां पर हुई है चंपाहाटी में, हमको लोगों को ले गए थे हम लोग अधिक मास में अभी उस जगह पर। तो उस जगह पर ये गीत गोविंद लिखा गया है और भगवान ने उनको वरदान दिया है, चैतन्य महाप्रभु आके उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु भगवान ने स्वप्न में आकर उनको बताया कि मैं जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊंगा तो नित्य रूप में आपके गीत गोविंद का आस्वादन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में नित्य रूप में इसका पठन करते थे और आनंद लेते थे उसके अंदर। वही गीत गोविंद आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में रोज गाया जाता है, तो जगन्नाथ जी बड़ा आनंद लेते हैं उसको सुनते हुए। वो जो गीत गोविंद लिखा हुआ एक उनका फेटा होता है, वो फेटा उनको रात को बांधते हैं बड़े श्रृंगार वेश में और भक्त लोग गीत गोविंद का गायन करते हैं, भगवान बड़ा आनंद लेते हैं उसको। तो वो गीत गोविंद, अभी ये सब बैकग्राउंड इसलिए बताया कि गीत गोविंद क्या है आपको समझेगा नहीं, गीत गोविंद क्या है। तो वो गीत गोविंद जो चंपाहाटी में जयदेव गोस्वामी ने 8वीं सदी में पूरा लिखा, कोई लोग मुझे पूछ रहे थे क्या है गीत गोविंद, तो मैंने कहा कि 5वीं डिग्री का PhD का स्टडी है भक्ति का, हम लोगों को बताने की भी योग्यता नहीं है और पढ़ने की भी योग्यता नहीं है, हम लोग तो अभी गीता में अटके हुए हैं, भागवत में अभी शुरुआत भी नहीं की हुई है, तो आगे गीत गोविंद तो बहुत दूर की बात है। एनीवेज, तो वो गीत गोविंद एक यहाँ की एक माता, एक स्त्री यहाँ बैठकर बहुत सुंदर राग में उसको गा रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु रोज की तरह आ रहे थे सुनने के लिए, गदाधर को मिलने के लिए। तो उसके प्रेम भरे रागदारी में प्रेम से गाए हुए गीत गोविंद से बड़े आकर्षित हो गए वो, और ये भूल गए कि वो स्त्री गा रही है, उसका गायन और उसका भाव और उसका जो शब्द है उसका, बड़े व्याकुल हो गए वो, भाग के आए और वो गाने वाले व्यक्ति को आलिंगन देना चाहते थे, लेकिन थे सन्यासी वो, अभी तो भाव में उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, तो उनको उस कन्या को जाके आलिंगन करने के पहले गोविंद आके उनको ऐसा पकड़ता है, महाप्रभु महाप्रभु तुम्हें सन्यासी, हाँ अब सन्यासी हो, ये तो कन्या है, तुरंत एकदम भाव में आ गए वो, कह रहे गोविंद तू मेरा सच्चा भक्त है, तूने मुझे आज बचा लिया, नहीं तो मेरा सन्यास धर्म आज भ्रष्ट हो जाता। भाव की बात तो बाजू में रह गई, लेकिन अगर मैं स्त्री को स्पर्श करता तो मेरा सन्यास धर्म भ्रष्ट हो जाता। वो इतने कड़े सन्यासी थे कि वो स्त्रियों का जूता जो है ना, वो लकड़ी का खिलौने वाला, वो भी देखते नहीं थे, वो इतना कड़ा सन्यास था उनका। तो गोविंद का बड़ा धन्यवाद करते हो, गोविंद थैंक यू वेरी मच, हाँ मैं तो भाव में आ गया था लेकिन तुमने मुझे ऐसे ऐन मौके पे बचा लिया। वो कहते हैं भक्त लोग ऐसे होते हैं, वो दूसरों को पतन होते हुए देख नहीं सकते हैं, अरे ये देखो गिर रहा है, अरे ये देखो पाप कर रहा है, ये देखो गलती कर रहा है, करने दो साले को, करने दो, ऐसा ही होना चाहिए, उसको दंड मिलेगा, अच्छा रहेगा, ये हमारा भाव है। लेकिन एक वैष्णव क्या सोचता है, अरे भगवान का नाम लेने वाला भक्त ये मेरा गुरु भाई, उसके हाथ से गलती हो रही है, उसको बचाना मेरा फर्ज है, चाहे मैं बोलूंगा तो उसको अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करूंगा, अच्छी तरह से मीठी मीठी बात करके उसको बचाऊंगा पाप से। हमको भी यही भाव रखना चाहिए, दूसरों का पतन होते हुए देखते रहना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बड़े प्रेम से, उसको बुरा लगेगा शायद, उसका अहंकार ठेस लगेगी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए उसको बचाने की। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब हम खुद आगे जाके गलती करेंगे तो हमको भी बचाने वाला कोई चाहिए ना अपने को। अगर मैं गिर रहा हूँ और लोग बोलेंगे अच्छा हो गिरने दे उसको, बहुत होशियारी दिखा रहा था, अच्छा हो गया, बहुत साल तक हमारे पर रोप जमाया उसने, भी गिरने दे उसको। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सोचकर करना चाहिए कि मैं भी गलती करता हूँ, कर सकता हूँ, आज अच्छा हूँ कल गलती करूँगा, तो मुझे बचाने वाला भी कोई चाहिए। और भक्त कैसे बचाते हैं, एक विशेष बात है इसमें समझने की, भक्त जो है वो ऊपर से उसको खींचते नहीं है, वो नीचे है, भक्त ऊपर है तो उसको हाथ देकर ऊपर खींच रहे हैं, ऐसा भक्त नहीं करते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं, उसके नीचे जाते हैं और उसको ऊपर ढकेलते हैं। इसमें अंतर है कि नहीं, हाँ इसमें अंतर है। अगर बच्चा गिर जाता है तो माता जमीन पर बैठती है और फिर उसको उठाती है, ये दूसरा तरीका है बचाने का। और भक्त लोग वैष्णव लोग बचाते हैं इस तरह से बचाते हैं। तो हम सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं कभी भी किसी के पतन पर ना हंसूं, और किसी का पतन हो रहा है मेरे सामने, मैं जाके उसको बचाऊं, ताकि जब भी मेरा पतन होगा, मेरे हाथ से गलती होगी, तो मुझे भी कोई बचाने वाला आएगा, मुझे भी संभालेगा, मेरी रक्षा करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मेरी भी आपको एक विनती है, कभी आप आगे जाकर देखेंगे मेरे जीवन में कुछ संकट आए या कुछ पतन हो गया, कुछ गलती किया, अपराध किया, कुछ नियम तोड़ दिया मैंने, तो मुझे त्याग मत देना प्लीज़, हाँ डोंट रिजेक्ट मी, कृपा करके मुझे जहाँ पर भी गटर में गिरा हूँ वहाँ से उठाना और अपना बना लेना, हाँ डुटकार मत देना। भक्तों के लिए एक ही आशा होती है कि कभी भी आगे जाकर, हम सब पतनशील है, वी आर ऑल फैलिबल, हम सब लोग किसी भी स्थान से गिर सकते हैं। ऐसा कहते हैं जितना ऊपर जाके जब गिरेंगे ऊपर जाके तो वो ज़्यादा आवाज़ आएगा। जो नीचे से गिरता है ज़्यादा आवाज़ नहीं आता है, जो ऊपर जाता है और बाद में गिरता है डड़ाम, दुनिया को समझता है कि ये गिर गया। हो गया इनका कल्याण अभी। और उसका ज़्यादा घवघवा होता है दुनिया भर में, अरे वो गिर गया, वो पता है वो गिर गया। लेकिन उस समय अधिक संख्या में लोग उनको त्यागने का सोचते हैं, उनके बारे में निंदा करने लगते हैं। एक आध दुर्लभ ऐसा व्यक्ति होता है, बोले कोई बात नहीं, उसको बचाना मेरा फर्ज है, आई मस्ट गो एंड सेव हिम। तो इसलिए हम सबको भक्तों से विनती करनी चाहिए, प्लीज़ डू नॉट रिजेक्ट मी, मुझे त्याग मत देना, मैं भी आप जैसा ही सबके जैसा मैं पतनशील हूँ, और पतन हो गया तो मुझे धुतकार मत देना, मुझे बचा लेना, ताकि मैं दोबारा भगवान के चरणों में अपनी सेवा को रुजू कर सकता हूँ। लास्ट दो कहानी ऐसी है, अभी अभी के जो पुजारी यहाँ पर थे उन्होंने ये कहानी बताई है कि एक बार वो सो गए और भगवान को बीड़ा रखना भूल गए, तो गोपीनाथ जी रात सपने में आए, बोला मुझे बीड़ा रखा नहीं आपने, तो धाड़ करके जग गए, अंदर गए देखा तो बीड़ा नहीं था, भूल गए थे। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद में कभी भी रात को बीड़ा रखना भूला नहीं। तो भगवान प्रत्यक्ष है, प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कोई पत्थर की और लकड़ी की मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है वो, जैसा आप संबंध करेंगे वैसा रूप प्रतिसाद मिलेगा आपको। ऐसे ठाकुर जी का विग्रह जो है ना वो बहुत ही व्यक्तिगत रूप में अपने संबंध करते हैं। तो भगवान ने उनको थोड़ा डांटा सपने में, और कहते हैं कि तुम्हारे मेरी सेवा में एकाग्र मन नहीं है, तुम्हारा चंचल मती, तुम्हारा मान जो है ना यहाँ वहाँ भटकते रहता है जब सेवा करते हो, इसलिए भूल जाते हो। डांट दिया उनको प्रेम से, फिर वो कभी भूले नहीं उसको। आगे एक कहानी आती है कि उसके बाद में वो रात में यहाँ पर मंदिर में सोते थे, बीच बीच जगते थे रात को, तो उनको घुंघरू की आवाज़ आती थी, तो भी समझो आप सो रहे हो अकेले यहाँ पर और आपको छुम 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 आवाज़ आ गया, तो क्या होगा आपका, ठंड के मौसम में पसीने छूट जाएंगे आपको, बोले यहाँ पर कौन आ रहा है। हमने वो पिक्चर देखा था बचपन में 20 साल बाद, उसमें रोज रात को छुम 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 ऐसा आवाज आता था, वो थिएटर में सब डरते थे उसको हाँ देख के। तो उन्होंने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी मुझे रात को थोड़ा डर लगता है, घुंघरू की आवाज़ आती है ना। बिल्कुल सही बात है, ये राधा रानी का अपोवन बगीचा है, ये राधा रानी और कृष्ण भगवान रोज यहाँ व्यवहार करते हैं, वो घुंघरू की आवाज़ राधा रानी के चरणों के घुंघरू के नूपुर की आवाज़ है, कोई चिंता करने की बात नहीं, आप भाग्यवान हो आपको सुनाई पड़ रही है। हाँ वो तो घुंघरू की आवाज़ रोज आती है, लेकिन हमारी मति इतनी भ्रष्ट हो गई है हमको सुनाई नहीं पड़ता है, वो ऐसे कहते हैं भगवान की मुरली भी रोज बजती है, बुला रही है हमको, आओ चलो अब लौट चले। हाँ, लेकिन हमारा इतना शोर हो रहा है इच्छाओं का और कामनाओं का वासनाओं का, वो शोर में हमको वो मुरली कहाँ सुनाई पड़ेगी। जब ये काम वासनाओं का शोर खत्म हो जाएगा ना, शांति हो जाएगी, तभी वो दूर से मुरली की आवाज़ आएगी। मैं जब वृंदावन में था ना, तो रात के समय पर एक दूर जगन्नाथ घाट था, हमारा घर उधर विद्यापीठ के पास था, और कई 5 किलोमीटर दूर वो जगन्नाथ घाट है, वो जगन्नाथ का मंदिर है, और वहाँ पर वो शिव जी की धुन गाते थे, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 10 से लेकर रात को सुबह 4 तक सुनाई पड़ता था, 4-5 के बाद में सुनना बंद होता था। तो हमको लगता था कि रात का ही शायद कीर्तन होगा। जब वहाँ पर गए तो मालूम पड़ा कि 24 आवर कीर्तन चल रहा है। दिन में क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि दिन में तुम्हारे आसपास में इतना शोर है, वो आवाज़ नहीं आ रही उधर। जब तुम्हारे आसपास शांति हो जाती है, फिर वो दूर की ध्वनि तुम्हारे पास पहुँचती है। उसी तरह से हमारे तो आसपास भी बहुत शोर है, और हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर का शोर चल रहा है, तो मुरली कहाँ सुनाई पड़ेगी। जब ये आसपास का और अंदर का शोर जब भगवान के नाम का जप करके धीरे धीरे शांत हो जाएगा, मन अस्वस्थता से स्वस्थ हो जाएगा, शांत हो जाएगा, विकारों से मुक्त हो जाएगा, काम वासनाओं से मुक्त हो जाएगा, तभी आपको भगवान की मुरली सुनाई पड़ेगी, और साथ साथ छुम 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 वो भी सुनाई पड़ेगा। तो मैं ये शुभकामना करता हूँ कि वो दिन जल्द आ जाए। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो एक यहाँ पर आगे कथा बताना बाकी था कि यहाँ से हम चातक पर्वत जाएंगे। देखो ऐसा है, इसके बाद में जब यहाँ से हम निकलेंगे तो जिनको शॉपिंग में जाना है वो शॉपिंग में जा सकते हैं, जिनको नहीं जाना है वो हमारे साथ आ सकते हैं और आगे के दर्शन हम करेंगे। तो चातक पर्वत का कथा ये है कि चातक पर्वत रेती का एक टिकाट, मतलब क्या, टेकड़ी रेती का टीला। हाँ, तो यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी रेती के टीले हैं वो सब चातक पर्वत मानते हैं उनको। और चातक पर्वत का ये लीला है कि भगवान ऐसे एक बार भाग के आए और इस पर्वत को देखा उन्होंने, तो उनको गोवर्धन की याद आई, गोवर्धन गोवर्धन करके भाग के गए, वो पूरे पर्वत में घुस गए और बेहोश हो गए। उनका वर्णन किया है कि कैसे भागे, वो ऐसे भागे कि ना गोविंद भाग सका ना बड़े बूढ़े भक्त भाग सके, वो तूफान की तरह भाग के गए और आगे जाकर बेहोश भी हो गए। उसके बहुत देर बाद भागते भागते बाकी सब लोग पहुंच गए, इतनी हवा की गति से भागे, इतना आवेश था उनके अंदर, गोवर्धन की याद आई उनको, गिर गए बेहोश हो गए। फिर भक्त लोग आए कि बहुत दुखी हो गए भगवान की अवस्था देखकर, तो उन्होंने कीर्तन शुरू किया। बहुत देर के बाद में भगवान जग गए और सब पर गुस्सा किया उन्होंने, बोला आज मैं गोवर्धन की याद करके गोवर्धन पहुंच गया था और वहां पर मैंने देखा कृष्ण भगवान लीला कर रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं, उतने में वहां पर राधा रानी आती है, सखियां आती है और लीला आरंभ करते हैं, और वो लीला में मुझे सखियां कहते कि आप जरा फूल बिनो, और मैं फूल बिनने ही वाला था तब आप लोगों ने जोर जोर चिल्लाकर मुझे वापस लेके आए। ये भाव है भगवान की भक्ति का। तो चातक पर्वत हमें याद दिलाता है, चातक पर्वत सब गोवर्धन पर्वत के समान है, उसके अंदर गोवर्धन भगवान ने देखा और उनको ब्रज की याद आई। तो चातक पर्वत हम देखेंगे, उसके आगे यमेश्वर तोता जाएंगे, मतलब ये पूरा गार्डन यमेश्वर तोता ही है, लेकिन यमेश्वर यानी कि यमराज ने भी शिव जी का स्थापना किया यहाँ पर। इसी वो लक्ष्मी देवी से वर्णन सुन रहे थे इस क्षेत्र के महात्म्य का, और शिव जी प्रकट हो गए और कृपा किया शिव जी ने यमराज के ऊपर। ऐसे कहते हैं कि मार्कंडेय मुनि को यमराज ऐसे ले जा रहे थे पकड़ गए, तब शिव जी ने यम पाश से मार्कंडेय मुनि को मुक्त कर दिया। तो मार्कंडेय मुनि ने और यमराज ने दोनों ने शिव जी को यहाँ पर स्थापन किया, जन्म मृत्यु के पास से यम पास से मार्कंडेय मुनि को शिवजी ने मुक्त कर दिया। तो शिवजी को यमराज ने स्थापन किया, उसको यमेश्वर महादेव कहते हैं, और मार्कंडेय मुनि ने भी शिवजी को स्थापन किया, उनको मार्कंडेयेश्वर महादेव कहते हैं। तो दोनों के मंदिर इसके आगे हैं। टोटा का मतलब गार्डन, बगीचा, उपवन। तो इसके आगे हम चातक पर्व देखेंगे, यमेश्वर और मार्कंडेयेश्वर वहां का दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।